குந்தேந்துசங்கதசனம் சிசுகோபவேஷம் இந்திராதிதேவகணவந்திதபாதபீடம் விருந்தாவனாலயமஹம் வசுதேவசூனம் நவஜலதரவர்ணம் சம்பகோத்பாசிகரணம் விகசிதநளினாஸ்யம் விஸ்ஃபுரன் மந்தஹாஸ்யம் கனகருச்சிதுகூலம் சாருவர்ஹாவசூலம் கமபி நிஃலசாரம் நௌமி கோபிகுமாரம். பகவான் கீ கிருபா ஹம் பர் ஹை யே தோ சத்ய ஹை, சித்தாந்த கீ பாத் ஹை. பகவான் கீ கிருபா அனந்த ஹை, அசீம் ஹை, அபார் ஹை, நித்ய ஹை, நிர்பாத் ஹை, ஔர் சப் கே லியே ஹை. உஸ் கிருபா சே ஹமே ஜோ லாப் நஹி மில் ரஹா ஹை, இஸ்கா பிரதான காரண யஹி கஹா ஜாதா ஹை கி கிருபா மே ஹமே விஸ்வாஸ் நஹி ஹை. யே பகவான் நே சாஃப் ஷப்தோ மே கஹா, பினா கிசி ஹிச்சக் கே, சுஹ்ருதம் சர்வ பூதானாம் ஜாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி, சமஸ்த பூத பிராணியோ கா கிசி பக்த கே பகவான் சுஹ்ருத ஹூ, கிசி பக்த பர் கிருபா கரே யா பக்த பர் ந கரே, கிசி புண்ணியாத்மா பர் கிருபா கரே பாபாத்மா பர் ந கரே, தேவதா பர் கிருபா கரே மனுஷ்ய பர் ந கரே, புருஷ் பர் கரே ஸ்திரீ பர் ந கரே, ஐசி கோயி பி இஸ்மே பாதா நஹி ஹை, கோயி கைத் நஹி ஹை. சர்வ பூதானாம் சமஸ்த பிராணியோ பர் ஜோ பி பிராணி ஹை, கேவல் மனுஷ்ய ஹி நஹி, பிராணி மாத்திர பர் பகவான் கா ஸ்வாபாவிக் சஹஜ சௌஹார்த ஹை, மனே வோ சப் பர் பினா ஹி காரண கிருபா கர்தே ஹை, ஔர் கிருபா ஹி நஹி கர்தே பிரேம் கர்தே ஹை, கிருபா கி அபேக்ஷா பி பிரேம் கா சாமீப்ய ஔர் அதிக ஹை. கிருபா மே தோ கபி அக்ருபாலு பி ஹோ சக்தா ஹை ஆத்மி கிசி காரணவஸ், பர் ஜஹாம் சௌஹார்த ஹை ஜஹாம் ஹ்ருதய மே வேதனா ஹோதி ஹை வஹாம் பர் பூல் நஹி ஹோதி. தோ பகவான் கி கிருபா சப் ஜீவோ பர் சமான பாவ சே நித்ய நிரந்தர் ஹை, யே பகவான் நே ஸ்வயம் கஹா. ஔர் தூசரி பாத் பகவான் நே யே கஹீ கி இஸ் கிருபா கோ யே ஜோ மேரா சௌஹார்த ஹை, யே ஜோ மேரா பிராணி மாத்ர கே பிரதி ஜோ பிரேம் ஹை, இஸ் பாத் கோ இஸ் பிரேம் கோ ஜோ ஜான் லேதா ஹை தோ ஜானதே ஹி உஸ்கோ சாந்தி மில் ஜாதி ஹை. தோ யே பகவான் கே வாக்ய ஹை, தோ பகவான் கே வாக்ய மித்யா ஹை நஹி. பகவான் ஜோ குச் கஹதே ஹை யா தோ ஹம் உஸ்கா அர்த் நஹி சம்ஜே, ஔர் யா ஜைசா பகவான் கஹதே ஹை வைசா ஹம் பனே நஹி. இஸ்மே சப்சே படி சீஜ் ஜோ பீச் மே ஆயி வோ ஜாத்வா ஹை, ஜாத்வா. யே பகவான் சப்கே ஸ்ஹ்ருத ஹை, இஸ் பாத் கோ ஹமே ஜான்னா சாஹியே. கிசி கே கோயி முகத்தமா லகா ஹோ, கிசி பர் கோயி விபத்தி ஆயி ஹோ லௌகிக், ஔர் யதி ராஜா கி பாத் அலக ரஹி, ஹமாரே பிரசிடெண்ட் ஆஜ்கல் பண்டித் ஜி மஹாராஜ் ஹை உன்கி பாத் அலக ரஹி, ஜிலே கா கலெக்டர் யதி கஹ தே கி ஹம் தும்ஹாரே மித்ர ஹை, ஹம் தும்ஹாரா பலா கர்னே பர் தத்பர் ஹை, தும் டரோ மத். தோ ஜித்னா பி வோ விபத்தி கா பய ஹோகா வோ கலெக்டர் கி இஸ் வாணி சே உஸ்கே ஆஸ்வாசன சே மிட் ஜாயேகா, ஔர் ஹமே சாந்தி மில் ஜாயேகி, ஸ்வாபாவிக். ஔர் யதி கிசி கோ நேரு ஜி சிட்டி லிக் தே ஆஜ் கி பாய் தும் கிசி பிரகார் சே கபராவ் மத், ஹம் தும்ஹாரே ஹை, தப் தோ ஃபிர் சந்தேஹ ரஹி நஹி ஜாய், ஃபிர் தோ தமாம் ஹமாரா காம் பன் கயா. யே லௌகிகதா மே பலா நேரு ஜி பூல் பி ஜா சக்தே ஹை, नेहरू जी के विचार भी बदल सकते हैं, परंतु परमात्मा इनका मत नहीं बदलता। ये भगवान ने कहा कि मेरा जो मत है वो नित्य मत है। भगवान का स्वभाव नहीं बदलता, भगवान का धर्म नहीं बदलता, वो जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इसमें जो भगवान ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूं, इस बात के जान लेने पर शांति मिल जाती है। तो अगर हम जान लेते भगवान की हम पर बिना कारण अहेतु की कृपा है, भगवान हम पर अकारण स्नेह करते हैं, ये बात हम जान लेते तो क्या होता, हम उनके चरणों पर लुट पड़ते। स्वाभाविक भगवान ने ये कहा श्रीमद् भगवद गीता में, जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, तो हम उन्हें पुरुषोत्तम जान लेते, हम उन्हें कृपालु दयालु कृपा सागर जान लेते और समझते कि वो हम पर उनकी बड़ी कृपा है। तो हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, किसी भी अपने से बड़े अपने से महान शक्ति वाले के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए कि वो हमारा है, उसकी हम पर बड़ी कृपा है, बड़ा उसका स्नेह हम पर है, तो स्वाभाविक चिंता और भय दूर हो जाते हैं। और ये स्वयं भगवान कहते हैं, तो चिंता और भय भगवान को अपने ऊपर कृपा करने वाला मानने पर भी यदि रहते हैं, चिंता और भय रहते हैं, तो स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, कृपालु हैं, इस बात को हमने जाना नहीं, सुना है, पढ़ा भी है, पर जाना नहीं। जानने के बाद तो स्वाभाविक प्रभाव होगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर सहज में यह है सीधा, कि भगवान की कृपा को हमने जाना नहीं, उस पर विश्वास नहीं, यही हमारी हमें दृष्टि न मिलने में, कृपा का ठीक ठीक लाभ न मिलने में बाधा है, कारण है। दूसरी बात रही महात्माओं की, यदि हम किसी महात्मा को ठीक ठीक महात्मा मान लें और वो यदि महात्मा है तो हम महात्मा हो जाएंगे। ये या महात्मा से भी महात्मा का जो कुछ फल मिलना वो मिल जाएगा। जैसे ये नियम है कि लोहा अगर पारस को छू जाता है तो सोना बन जाता है, तो यदि पारस भी है और लोहा भी है और छू भी गया तो सोना बन ही जाएगा। उसमें अगर सोना नहीं बनता तो तीनों में कोई न कोई कसर कहीं पर है। हम जिसको महात्मा मानते हैं वो चाहे महात्मा नहीं है, और हम अपने को लोहा मानते हैं अधिकारी, हम चाहे लोहा नहीं है, या हमारा स्पर्श नहीं हुआ है। ये एक सहज युक्ति है कि महात्मा भी हो और महात्मा का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए, और हम महात्मा को महात्मा मानते भी हों और हमारा ये लोहापन दूर न हो जाए, ये होता नहीं। तो इसलिए वहां पर भी यही बाधा है कि हमने महात्मा को महात्मा या तो समझा नहीं, और या जिसको हम महात्मा मानते हैं वो महात्मा है नहीं, और या हमने उसका स्पर्श किया नहीं। उनका दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान की दया से, प्रार्थना से, नाम से लौकिक और पारलौकिक विषय में क्या हो सकता है। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है ही जो नहीं हो सकता। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता।
जिसको असंभव मानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो है उसी का नाम भगवान है। जो सब कुछ कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो, उसका नाम भगवान है। और उसकी अगर हम पर दया है या उसकी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास पूर्वक, या उसका हम नाम लेते हैं विश्वास पूर्वक, तो लौकिक पारलौकिक कोई कार्य हो वो संपन्न हो जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु लौकिक कार्य के लिए प्रार्थना करना, लौकिक कार्य में भगवान की दया का प्रयोग करना, ये मूर्खता है, ये बहुत छोटापन है। और इसमें एक बड़ी भारी दूसरी दोष की बात यह है कि जहां हम लौकिक कार्य के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे, उस कामना की पूर्ति को हम भगवान से चाहेंगे, वहां एक महत्व की बात समझने की यह है कि हमारी दृष्टि में वहां भगवान बड़े नहीं हैं। हम जिस विषय को चाहते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो विषय महान है, वो हमारा साध्य है और भगवान उसके साधन हैं। भगवान उसमें साधन है, साध्य नहीं। यदि मान लीजिए किसी कारण से भगवान ने हमारी मन की इच्छा मनोरथ को नहीं पूर्ण किया कुछ समय तक, प्रत्येक सकाम उपासना में, प्रत्येक सकाम भक्ति में प्रधानता होती है काम्य वस्तु की, ये समझ लेने की बात है। प्रत्येक सकाम वस्तु, इसीलिए तो हमारे पास रोज ऐसी घटनाएं होती हैं, तो सब शस्त्र नाम का तो पाठ करवा लिए, कुछ हुआ नहीं तो अब मन आता है कि सब चंडी करवा लें। तो चंडी में, देवी में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते हम उस दृष्टि से, लेकिन अगर अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो विष्णु को छोड़कर देवी को भजने की आवश्यकता क्या है? और अगर विष्णु में ताकत नहीं है तो देवी में ताकत कहां से आ जाएगी? दोनों एक ही तो हैं। परंतु जहां काम हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, वहां स्वाभाविक ये मन में संदेह रहता है, कमजोरी रहती है, भाई विष्णु से काम नहीं हुआ देवी से ही, देवी से नहीं हुआ तो गणेश से ही, गणेश से नहीं हुआ तो शंकर जी से ही, और इनसे नहीं हुआ तो कोई बाबूजी की खुशामद से ही, उससे नहीं हुआ तो चोर बाजारी से ही। अपने तो वस्तु मिलनी है ना, और उससे ना हुआ तो खुली चोरी से ही। इस प्रकार से पतन का डर लगा रहता है जहां भगवान के सिवा दूसरी वस्तु की कामना होती है। परंतु भगवान के लिए ऐसी बात नहीं, इसीलिए इस निष्काम भाव को ऊंचा रखने के लिए ज्ञानेश्वर जी ने तो अपनी भावना से इस श्लोक का अर्थ ही और कर दिया। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर शब, उन्होंने कहा, उसके बाद एक महात्मा ने महाराष्ट्र का और भी लिखा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हम लोग इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो एक क्रम है इसको नहीं मानते हम, क्योंकि हम जिज्ञासु को अगर बीच में ले लेते हैं तो अर्थार्थी आगे बढ़ जाता है। तो हमें तो लेना यूं है कि सबसे नीचा कौन अर्थार्थी, उससे ऊंचा कौन जो विपत्ति में पड़ के विपत्ति से बचने के लिए भगवान को भजे, किसी अर्थ के लिए नहीं, उससे ऊंचा वो जो भगवान को जानने के लिए भगवान को भजे, और सबसे ऊंचा वो भगवान को जान गया, इस प्रकार प्राय अर्थ किया है। वो कहते हैं भाई हम तो ये नहीं मानते, दृष्टिकोण अपना है और बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि जिस क्रम से भगवान ने कहा वही क्रम ठीक है। तो पहले भगवान ने कहा आर्त, आर्त का अर्थ क्या, कि जो भगवान से मिलने के लिए आतुर हो वो आर्त, जो भगवान को जानने के लिए आतुर हो असली आर्त वही है, जगत की जो आरती है ये आर्तपना है, और इस आर्तपने को लेकर हम जगत की वस्तुओं को मांगते हैं, चाहते हैं। ये तो अगर हम कुमार्ग में गए तो नरक में ले जाएगा, तो ये आरती नहीं है। सच्चा आर्त वो है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आते हो, आतुर हो तो उसके मन में आता कि भगवान कैसे मिले, कहां मिले, जाने। तो ये भगवान को जानने की जो मन में तीव्र पिपासा है, इसका नाम है जिज्ञासा। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है, नवीन अर्थ है ये, जिसमें है, जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। आर्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए, आतुर है। अब नहीं मिले तो पूछता है भाई कैसे कैसे मिले, कहां मिलेंगे। और ये आरती होती है, जब आर्त मनुष्य होता है किसी वस्तु के लिए तो कहां मिले खोज करता है, सब करते हैं। तो जानने की इच्छा जब हुई भगवान को तीव्र आर्त होने के कारण से, तब वो जिज्ञासु हो गया। अब रहा अर्थार्थी, तो कहते हैं कि हम जिसको जगत में अर्थ मानते हैं ये तो अनर्थ है, तो भक्ति से अर्थ को क्यों चाहेगा, ये तो अर्थाख्यम अनर्थ है, इसका नाम तो अर्थ है और है अनर्थ। ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं, ये सबका अनुभव है, और ये सारे संतों की घोषणा है। श्रीमद् भागवत में आया कि ये जो अर्थ है ये तो इसका नाम ही अर्थ है ये अनर्थ। तो अनर्थ को अर्थ अगर भक्त माने तो भक्त कैसा हो। तो कहते हैं कि जो परम अर्थ भगवान है, भगवान ही अर्थ है और सब अनर्थ है। तो वो जो जिज्ञासु है वो उसका रूप क्या है, वो केवल सारे अर्थों को छोड़कर वो भगवत रूप अर्थ का अर्थी है। तो आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, और भगवान को जान गया, जान के प्रेम करता है तो वो ज्ञानी है। इसलिए सकाम भाव का विरोध करने वाले महापुरुषों ने तो इस प्रकार से कहा कि भक्त जो है वो आर्त और अर्थार्थी, भक्त को जो जगत के पदार्थों के लिए आर्त होता है अर्थार्थी होता है उसको तो हम भक्ति नहीं मानते। तो चाहे इनकी ये ऊंची भावना बड़ी सुंदर है, जहां तक हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, वहां तक प्रधानता उस काम्य वस्तु की है, जो उसके लिए साधन है उसकी नहीं। तो इसलिए इसमें डर है, परंतु भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक कोई विषय अप्रीतिकर नहीं है। भगवान के लिए कोई विषय बड़ा छोटा नहीं है, वो तो भक्त के हृदय के विश्वास को देखते हैं। विश्वास पूर्वक जिस भक्त ने भगवान की को माना, अब उसकी प्रत्येक आवश्यकता को भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो आवश्यकता छोटी झोपड़ी की उसकी हो और चाहे वो आवश्यकता उसकी वैकुंठ की प्राप्ति की हो। उनके लिए छोटा बड़ा काम नहीं, छोटा बड़ा काम जो है ना ये हम लोगों के लिए है। बल्कि एक और बात है, और वो विशेष प्रेम की बात है, भगवान के लिए छोटा काम ही बड़ा काम है। सारे विश्व को, अनंत ब्रह्मांडों को अपने संकल्प में धारण करने वाले भगवान यदि गोवर्धन पहाड़ को उठा लें तो इसमें क्या उनके लिए आश्चर्य की बात है। जिनके संकल्प में अनंता अनंत ब्रह्मांड विद्युत हैं, वे भगवान यदि किसी पहाड़ को उठा लें अंगुली पर तो बड़ी बात हम लोगों के लिए तो बहुत है, पर उनके लिए क्या है। पर बड़ी बात उनके लिए वो है कि वो भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठाने वाले भगवान, छोटा सा पीड़ा नहीं उठा सकते। ये महत्व है क्योंकि यहां पर भगवान प्रेम परवश होकर के और इस श्रुति का स्वरूप यहां पर प्रत्यक्ष कराते हैं। अनुरणीया महतो महियान, महतो महियान तो उनको सब जानते हैं, तो स्वरूपगत अनुरणीयान, अनु छोटे में छोटे बन जाते हैं भगवान, स्वरूप से भी क्रिया से भी आचरण से भी ये भगवान की महत्ता है। भगवान वहां पर न मालूम क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं, तो ये भगवान की महिमा है। तो भगवान किसी का, भगवान ने हमारे माधवदास जी एक भक्त रहे, उनका तो शौच धोते थे वो, ये भगवान का करने का काम थोड़ा ही है। पर और उसने चाहा भी नहीं। भगवान की जो एक बाण है ना, ये सिद्धांत युग क्षेमम वहामि हम, ये तो भगवान को तो हमेशा कहता रहे कहीं, तब बचता आदमी भगवान की सेवा से। भगवान, ये उल्टी सी बात है, हम लोग मानते हैं कि भगवान नीच सेवा हमारी नहीं कर सकते, बहुत बड़े हैं, और भगवान से हमको बार बार कहना पड़ता कि भगवान हमारा ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। पर भक्तों को ये दिखता है कि उनसे बचना मुश्किल, वो आगे से आगे ऐसा काम कर रखते हैं। और सच्ची बात मैं कहता हूं, ये हमें पता नहीं है कि जगत में कौन शक्ति कब क्या काम कर रही है, वो भागवती शक्ति। उसके मैं उदाहरण दूं आपको, मेरे पास एक आदमी था, उसका नाम था हरिराम ब्राह्मण, सच्ची कहना सुनाता हूं मैं आपको। और वो वहां पर बंबई में रूई के पाटिये पर दलाली करता था, ये बात है कोई 32 वर्ष की बात होगी। वो रहता था मेरे पास, तो मैंने उससे कह रखा था मित्रता के नाते, एक दूसरे मित्र के लिए, कि भाई इस समय वो मित्र नुकसान में है, तो उसका उसका काम तुम मत करवाना। पर लालच से उसने उनका वो सौदा करवा दिया और उसमें बहुत अधिक घाटा हो गया। शनिवार की बात है, सोमवार को उसका भुगतान होना है, तो शाम को मेरे पास आया, रोने लगा। तो मैं उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, उसने कहा कि आपने तो रोका था और मैंने बात मानी नहीं और मैंने काम करवा दिया, मेरे पास उतने रुपए थे नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास रुपए है नहीं, मैं क्या करूं। तो बोले मैं, उसने कहा मैं क्या करूं, मैंने कहा रो तू क्या करे, तूने क्यों काम करवाया। तो उसने कहा रो, मैंने कहा रो भगवान के सामने, ऐसे ऐसे कोई सिद्धांत रूप से नहीं कहा। तो न मालूम क्या वो जाकर के हमारी गद्दी में, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, एक कोठरी है उसमें जाके बैठ गया, उसने किमाल बंद कर ली। उसने क्या किया, कैसे रोया, वो कोई भक्त नहीं था, उसमें अच्छे आचरण नहीं थे, वो झूठा भी था, उसने क्या किया मालूम नहीं। मैं बाहर बैठा, इतने में मेरे पास एक सज्जन का टेलीफोन आता है, वो अभी हैं, उनका फोन आता है कि भाई जी घूमने को जाएंगे क्या। मैंने कहा हाँ चले चलेंगे। तो बोले मैं कार लेके आता हूं, आप रहिएगा। वो कार लेकर के आए, मैं उनके साथ घूमने गया, बेलैंड पियर था उस समय, ये मेन ड्राइव नहीं बना था। तो उधर हम लोग गए, घूम घाम करके रात को 8 बजे लौटे। जब वो मोटर से मैं उतरने लगा तो वो मुझसे पूछते हैं कि वो हरिराम कहाँ है आजकल, अब वो क्यों याद, क्यों उनको याद आया। मैंने बात नहीं चलाई और मेरे मन में वो याद भी नहीं था, मैं भूल गया था और बातों में। तो मैंने कहा वो रो रहा है बैठा ऐसे ही। तो उन्होंने कहा क्यों रो रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात हो गई, अब वो बड़े पैसे पैसे के लिए मरने वाले आदमी थे धनी। उन्होंने कहा मुझसे कि भाई जी सवेरे आदमी भेज दीजिएगा, चेक मंगवा लीजिएगा। मैंने कहा चेक क्यों, किस बात का देते हैं आप। उन्होंने कहा मेरे मन में आ गई। मैंने कहा इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और रुपया आवे ना आवे, रुपया आने की उम्मीद बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि रुपया आने की उम्मीद हो ना हो चेक मंगवा लें। वो तो इतना कह करके गए, वो रकम मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। दूसरे रात को हम लोगों ने बिचारे कुछ एक दो मित्र और थे, उनसे पूछा कि भाई क्या करें, रुपया उनसे मंगा लेना, उनके प्रेम का दुरुपयोग करना है, ऐसी भी भावना मन में आई। तो बात हुई तो एक सज्जन ने हमारे मित्र थे उन्होंने ये कहा कि भाई जी द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था तो आप इसमें ना करने वाले कौन होते हैं। ये बात हुई जिन सज्जन को घर लगा था उन सज्जन ने क्या किया उनसे जब यह मालूम हुई उन्होंने हैंडनोट लिखा और मकानों के पट्टे साथ देकर के भेजे ईमानदारी से। मैं जिन भड़ा लगा था दलाल ने नहीं लक्ष्मी नारायण था भैगनी झुंझुनू का था एक हमने उसको भेजा वो जा करके पट्टा उसने दिया उनको और हैंडनोट दिया उन्होंने हैंडनोट को फाड़ दिया और पट्टे को लौटा करके उन्होंने चेक लिखा और चेक में रुपया नहीं भरा ब्लैंक चेक लिख के सही करके सौंप दिया कि मैंने रुपया किसी मैं तो देता ही नहीं मैं रुपया किसी चीज को रख कर दूं ये तो मैं कभी किसी को देता ही नहीं ये तो मेरे मन में आ गया क्यों आ गया मैं नहीं जानता मैं दे रहा हूं। भाई जी से कह दो कि जितना रुपया चाहिए उतनी रकम भर लें और निसंकोच बैंक से मंगवा लें ये मैं पट्टा नहीं चाहता। पट्टा लौट आया हैंड नोट फट गया रुपया मंगा लिया गया पेमेंट हो गया और दो महीने बाद उसने कमा लिए रुपये उनको वापस हो गया ब्याज समेत। अब ये कोई पूछे तो उनको किसने भेजा मेरे पास वो नहीं आते कोई रोज आते ही नहीं थे उन्होंने हरिराम का नाम क्यों लिया क्या जरूरत थी। मैंने पढ़ा है एक बड़े अच्छे विश्वासी ईश्वर के हैं उसका नाम है मिस्टर मुलर इंग्लैंड में है अभी है जीवित है उन्होंने वो बड़े भगवत विश्वासी हैं उन्होंने एक किताब लिखी है अपनी घटनाएं लिखी हैं वो लिखते हैं एक घटना में कि एक जगह पर संतरा नहीं होता था और संतरा वहां से बहुत दूर दूर मिलता था कहीं एक बुढ़िया बीमार थी उसको किसी संतरा बताया तो क्या हुआ वो सज्जन दूसरे स्थान से आए और जहाज पर चढ़ने के लिए चले जा रहे थे जेठी पर दोनों तरफ भिखारी बैठे थे तो उसमें एक बुढ़िया भिखारी बैठी थी वो दोनों हाथों ऊपर किए हुए थी अंधी थी आंख नहीं यूं हाथ किए बैठी थी तो वो सज्जन वहां से एक निकले दूर से आए हुए जहाज में बैठे जा रहे थे उन्होंने देखा इसके हाथ ऊंचे हैं उनके पास दो संतरे थे वो लाए थे कहीं दूर से 500-400 कोस से संतरे उन्होंने हाथ में डाल दिए वो उस समय संतरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान से ये भगवान कहीं संतरा आ जाए तो मेरा ठीक हो जाए ये प्रार्थना तो करती अब और भगवान ने 4 दिन पहले से संतरा वहां से दो भेजा नहीं तो आज पहुंचता नहीं यहां पर आगे से आगे एक घटना और सुनाऊ आपको सच्ची घटना इनसे विश्वास होता भगवान में। कलकत्ते वाले जानते होंगे सर कैलाश चंद्र बोस को डॉक्टर कैलाश बाबू जानते होंगे लोग ये कैलाश बाबू की अपनी कही हुई बात है। उनने कहा कि मेरी माँ बीमार बुढ़ी माँ रात को मरना सन्न हो गई अब मरे ये माँ की दशा तो मैं माँ के पास बैठा और मैंने माँ से यूं ही पूछ लिया कि माँ जी कोई चीज की मन में आपके हो तो मंगवा दें। अब माँ जी ने तो अजब चीज कह दी माँ जी ने कह दिया कि भाई अंजीर मिलता तो खा लेती अंजीर ये आज से लगभग 50-55 साल पहले की बात है उस समय हवाई जहाज नहीं था उस समय बंबई कलकत्ते रेल जाने आने में लगते थे 4 दिन और कलकत्ते में अंजीर मिलता नहीं था अब तो बहुत मिलता है तो इन्होंने आदमी भेजा कहा 1000 रुपया लग जाए कहीं से अंजीर मिले अंजीर नहीं मिला तो कैलाश बाबू ने कहा कि मैं उदास हो गया कि मेरे पास इतने रुपए और माँ मर रही और माँ की मामूली अंतिम इच्छा वो मैं पूरी नहीं कर सका हे भगवान। अब बोले मैं रोने लगा भगवान को याद करने लगा रात के 11 बजे मैं रो रहा याद कर रहा भगवान को रात के 11 बजे नीचे से एक जमादार ने आवाज दी डॉक्टर बाबू, तो मैंने सोचा कि किसी रोगी के यहाँ का कोई बुलावा होगा। मैं दुखी था तो मैंने झुंझला के कह दिया नहीं खोलेंगे के मार, हमारी माँ बीमार है। तो उसने कहा नहीं, जैसे कि बाबू जी एक विशेष जरूरी काम है। तो बोले मैंने ये कहा कि भाई कोई बीमार हो किसी और डॉक्टर को बुलवा लो, मैं नहीं आता अभी। उसने कहा कि बाबूजी बीमार कोई नहीं है, मैं एक चीज लेके आया हूं। तब मैंने किवाड़ खोले तो वहां पर पहले एक फार्म था त्रिभुवन दास हीराचंद कोई था, उनके उनके पूर्वजों की कोई बात है, अब फार्म है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कहा कि बंबई से वो सेठ आए थे, रात को 8 बजे पहुंचे, तो सवेरे वो रंगून जा रहे थे, उनके पास एक अंजीर की टोकरी थी, बंबई से लाए थे 4 दिन पहले। डॉक्टर से बड़ा काम, बड़ा बड़ा प्रेम था, तो सोचा कि सवेरे तुम 6 बजे यहां से चले जाएंगे, ये रात को ही भेज दें। तो अंजीर की टोकरी लेकर के वो जमा जा रहा था, जब उसने मुझे अंजीर की टोकरी दी तो बोले मेरे हृदय में तो मुझे तो भगवान मिलने से बढ़कर आनंद हो गया। अब मैं नहीं सोचता, नहीं समझता कि ये व्यवस्था कैसे हुई। मां मांगती है 4 दिन के बाद, मैं अंजीर के लिए रोता हूं 4 दिन के बाद, और अंजीर वहां से चलता 4 दिन के पहले।